ీన తస్మై శ్రీగురవే మంచాకల్పతాన పామనిభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణే గౌరక్షి ఆదేవి కాకుంభరగదయాచ మందీతారణ్యనివాసమంత్రిలసద్ధామాధ్యానోదరం గౌరచంద్రాజరాధికారి
ప్రారంభానంద సంపాదన ప్రారంభంగా నిశ్చాయ భగవంతుయా మహత్పురుషులో గృహి మనుష్యే గృహి అత్యంత గృహ ఆసక్త उनका नीच से शायद उनका परम मंगल साधन करने के लिए वो जाते हैं, अपना कोई भी उनका काम नहीं। तो इसके हमने दो अर्थ कर लाए, विभिन्न और भिन्न चेत संता। पांडवी जी बदलाव तो क्या क्या नहीं था, सभी जाते ऐसे खड़े थे और कब जाने नहीं देंगे, क्योंकि मन अकेले जाएंगे। इसी तरह दिन मैंने क्या होता है, दिन मैंने क्या तुम देरी करते क्यों आता है, बोलो दिन मनी क्या होता है। दिन मनी भी नहीं जानता, क्या जानता है। अच्छा लगता है बोलो तो
इन्हें दुखी हैं, गृह में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, अत्यंत अग्नि वो उनके घर पर जाएंगे भी तो वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे तो संसार में सभी लोग ऐसा कोई है ही नहीं है जो सुखी नहीं, जिनका पूर्व जन्म के इस जन्म के कुछ संस्कार ऐसे बने हैं जो उनकी कृपा को ग्रहण करने वाले हैं और जिनके अंदर में हीनता आई गई थी संस्कार के वजह से। हाँ, हमारा आज अहो भाग्य है जो ऐसे एक महात्मा हमारे घर में सत्ता है, तो वो साधु संत से कुछ लाभ है। इनका भक्ति का या श्रद्धा इत्यादि का संस्कार नहीं है वैष्णु ऐसे लोगों के हैं, ये लोग समझ रहे हैं कौन युधिष्ठिर महाराज और
नंद बाबा,
नंद बाबा अपने को ये भक्तिमान होते हुए भी दोनों भक्तिमान है साधु संघ को समझते हैं, इसलिए साधु संघ की महिमा साधन करके
रहते हुए चारों प्रकार के मत से रहे,
किंतु अपने को समझते हैं। संसार में सबसे बड़ा दीन वह है जिनको साधु संघ नहीं मिलता है, वो सबसे इससे दिन जगत में और कुछ है। ये लोग ऐसा समझते हैं कि वो मैं साधु संघ से बनती हूं, एक बहुत उन्नत व्यक्ति भी यहां तक कि पहली भक्ति की तो बात क्या है, राजानुगा में भी उसका प्रवेश हो गया है और उसकी भक्ति कुछ उनकी तक होने गई और साधु संघ नहीं है तो वहां से गिर पड़े। भावावस्था में भी पहुंच करके उपयुक्त और अनुकूल साधु संघ नहीं है वहां से गिर पड़े, इसलिए रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ के संघ परस्पर साधु संघ करते हैं, भगवान की लीला कथाओं को इसी से समस्या भक्ति बढ़ती रहती है और वो कृपा अवस्था हो जाएगी, अन्यथा भाव से सुख जाएगा और सुख करके नीचे लिंगी होकर के रसा कर, इसलिए साधु सुनती है, इसलिए नंद बाबा लज्जा नीचे उसमें उसको अर्थ बढ़ रहा है। असल में भक्ति के द्वारा जब दीनता आती है कितना गति सुनी कितना नदी आए उसका आकाश भी निर्णय करें तब वो वैष्णव की कृपा को ग्रहण कर, अन्नकार तंपाखंड अहंकार कुछ भजन का भी अहंकार करता है वो भी आ जाता है, भजन करने से दीनता आए क्या कितना भजन सनातन की बातों को
एक
पर्याय वाक्य सब कुछ अब देखो दिन देखो दीनता सबसे अधिक किसमें होगी, जिसमें भक्ति अधिक होगी उसी में दीनता होगी। रायानंद कह रहे हैं कि मैं अस्पृश्य हूं, आपने हमें स्पष्ट किया, और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं दीन हूं, मैंने तुम्हारा स्पष्ट किया अपने कल्याण दोनों की दिन और दोनों साधन भट्टाचार्य को कह रहे हैं अपने भाती के लिए। साधु भट्टाचार्य ने हमको आपके पास में भेजा हमारे कल्याण के लिए, जाओ उनके पास में उनके दर्शन से उनकी हरि कथा सुन करके आप समझे यहां कोई चीज कोई मिला साधु, और ये कारण है जिससे हमारे पर में साधु भट्टाचार्य ने आपको भेज करके हमारा कल्याण वो कहते हैं मेरा था दोनों तीन दिन पर। अच्छा, यदि दीनता स्वाभाविक है भक्ति का गुण है तो जिसमें सबसे अधिक भक्ति होगी उसमें दीनता भी सबसे अधिक होगी, तो रामानंद में और महाप्रभु जी में भक्ति किसमें अधिक है
दोनों
आदमी दीनता है दोनों
नहीं मैं केवल भी है
अब दोनों ने ये विचार किया जाए माँ प्रभु तो अभिप्रदानंद सब भक्ति के रस के सागर में और उन्होंने अपनी कुछ कृपा संचरित की पर वो भक्ति रूपी मेघ से वो बातें आई तो महाप्रभु जी रखना तो इसके द्वारा तो मालूम होता है कि भक्ति का स्थान
आपका जाति में
अस्त जाति वो महाप्रभु जी रस के समुद्र है भक्ति के समुद्र तो इनमें चिंता में और जब बिल्कुल तरह से विचार करते हैं रामानंद में जो चीज है आपने जान लिया तो जिसको सीखने के लिए महाप्रभु के पास में है वो चीज नहीं तो ये इस जाति की भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति को भक्ति नहीं कर तो भक्ति कारण से साधन करते हैं इसलिए भक्ति कहां ही आश्रय जाति जिसका भगवान आस्वादन न करता इसलिए देवता और जब दूसरी तरफ से विचार करते हैं तो भगवान भक्ति है भगवान जैसे देखो ये जिसने पैर मारा भृगु भृगु के समस्त समंदन समस्त कुमार के चरण बंदन करते हैं सबके ये मूल है अवतारों के और वे समय समंत मां के चरणों की वंदना करते हैं ये है और रामानंद यहां भक्तों में इतना नहीं है विशाखा जी इनमें आश्चर्य जाति भक्ति अत्यंत अधिक इसलिए तुम निपुणता है दोनों में भिन्नता दो प्रकार की उनका आश्चर्य जाति उनका विषय जाति दोनों का इसमें जब हम विचार करें तो अपनी दृष्टि से आश्रय जाति के दृष्टि से हम विचार करें तो वहां पर देखेंगे रामानंद जी की जो भिन्नता है मां प्रभु कह रहे हैं जब साधन भट्टाचार्य ने हमको उठे दिया और मैं आपके पास आया और ये जो ब्राह्मण इत्यादि है जितने लोग ये आपकी आप महा महाभागवत उत्तम है आपको देखने से ही इनको प्रेम आया और रामानंद कहते हैं कि आप भगवान हैं इसलिए आपके दूरदृष्टि से ही इनमें प्रेम आया तो अब दोनों ने युक्ति संगत कौन सी चीज देखती है रामानंद की बात या महाप्रभु की जब हम विचार करते हैं ना तो हम उनके प्रार्थी एक पक्ष हो जाता है राय रामानंद हम कहते हैं कि राय रामानंद जो बातें हैं वही बात
सजाते देखेंगे
हम देख करके क्या कहेंगे सचमुच में ही और जरूरत ही लिखा है दूर दर्शन है मां प्रभु जी का दर्शन से ही करने हो जाता है ये बात सच्ची लगती है रामानंद की इसलिए ब्राह्मणों की जो प्रेम की भक्ति हुई वो किसको देख करके हुई अरे रामानंद को तो वो ये देखते हैं तो वो गदगद क्यों नहीं होते और आज जो गदगद हुए देख करके किसका हरि बोल सुन करके
दोनों को व्यवहार देखकर
महाप्रभु जी का देखकर करुणा
की
क्यों रामानंद की दीनता को वो नहीं देख रहे हैं मां प्रभु जी की जो दीनता है वो ऐश्वर्य निश्चित है और ये लोग हैं वैसे ना इसलिए उनको तो दिखाई पड़ गए हम मां गुर्जीवा की जो दीनता है रामानंद है वो नहीं दिखाई जब ये सब विशेष रूप में सब विचार करते हैं तब ये सब आते हैं थोड़ी देर के बाद में ब्राह्मण आया एक उनकी बातें चल रही थी ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया महाप्रभु जी ने उसको स्वीकार कर दिया महाप्रभु जब जाने लगे तो राय रामानंद उनको दंड महाप्रभु जी ने कहा तुम्हार मुखे कृष्ण कथा मुखे हय पुनरति पाई देनो तुम्हार तुम्हारे मुख से कुछ नई कथा सुनने की लालसा हो रही क्योंकि साधर्म हमें बतलाया है आप हरि कथा के आधार समुद्र है मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। तो वो तो नहीं कहा किंतु ये संक्षेप नहीं है कहा, मैं आपके मुख से कुछ कभी कथा सुनना चाहता। महाप्रभु जैसे लोग स्वयं भगवान, अच्छा ये जो सुनना चाहते हैं ये चतुराई करके कह रहे हैं न वो स्वाभाविक रूप से सत्य कह रहे हैं। प्रभु भक्तों के मुख से अपनी लीला के उत्तरों को सुनने में इतना आनंद होता है कि उसमें रख जाते हैं। इसीलिए रात के समय में अंतर्ध्यान होने हुए थे, इसीलिए कि गोपियों के मुख से ऐसी ऐसी सब बातें सुने, कुछ वो दुख मिश्रित होकर के, कुछ क्रोध मिश्रित होकर के, कुछ गालियां जुटकर, कुछ सीधी साधी, कुछ उल्टी सीधी, ये सब प्रकार की मिश्रित ये सब सुनेंगे जो और कहीं नहीं सुनते और उन्होंने सुना भी वैसे। इसीलिए कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर के भगवान इतने प्रसन्न हुए, वेदों के ब्रह्मा इत्यादि के स्मृतियों के तौ इत्यादि के द्वारा जो प्रसन्न नहीं होते उसके द्वारा भी प्रसन्न। इसलिए स्वाभाविक रूप में ही चैतन्य महाप्रभु राय भी कह रहे हैं, राय यहां तक की कोई निसिंहानंद जी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा जब मैं आपसे कुछ हरी कथा सुनना चाहता, जो हरी कथा सुनना चाहता है तो जाओ रामानंद के पास में सुनो, जिससे मैंने हरी कथा सुनी है उसके पास में जाओ। सर भी प्रभु चला गया, वो जा करके देखा प्रभु स्त्रियों की सेवा में लगे, मेरे से जो थी लड़कियों की सेवा देवदासियों की, तो उनको विरक्ति, ये क्या साधु संघ और स्त्रियों की सेवा में लगा हुआ है, चले अरे हरि कथा सुन लिया कटे सुनना, तो सुना नहीं पर आए तो कुछ बोले नहीं मौन कर ठीक फिर जाओ जाकर के फिर सुना ठीक गए। इस बार उन्होंने आज कैसे आए आपके दर्शनों के लिए कुछ हरी कथा सुनने की, क्या सुनना चाहते हो? मैं कह जो आपने कुछ महापुरुष ने कुछ सुना, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जाओ भक्तों के निकट, मैं उतनी अच्छी तरह से हरी कथा नहीं बोल सकता हूं जो कि भक्त लोग बोल सकते हैं, वो प्रेम में पगे हुए होते हैं और हमारी लीला चरित्र को अच्छी तरह से बोलते हैं, मैं अपनी लीला कथाओं को मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए फिर राय जी इसका उत्तर देते हैं, आइए राय कहे आइए यदि पाम सुखिते दर्शन मात्र शुद्ध रहे मूल पुष्ट चित्त, आप आए ये बात तो ठीक है और दर्शन से हमें शोधन कुछ किया, दर्शन से शोधन किया लोगों के अंदर में कामनाएं वासनाएं इत्यादि तरह तरह की चीजें होती हैं, सबसे बड़ी भूमि है वासना, कर्मों के फल भोगने से भी प्रायश्चित करने से भी वासना नहीं जाती, आग लगा देने से बांस जल जाएगा किंतु नीचे की जो जड़ें हैं वो नहीं जड़ती, फिर वर्षा होने पर फिर से वो बात आ जाता, धूप की घास का भी ऐसे धूप की घास सूख जाएगी ऊपर से, जंगल में कहीं ही घास सब सूख रही और जहां पानी पड़ा उसे फिर हम सूख हो जाए, ऐसे ही ऊपर से कुछ प्रायश्चित हो गया ये सब हो गया किंतु वासना कर्मों की जो है वो नहीं जाती, संतों के समय से बात किंतु एक दिन में नहीं जाएगी धीरे 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 धीरे, वही था दर्शन मैंने आपका किया किंतु हमारा दुष्ट मन है बहुत अधिक मलिन हो गया है, आपके एक दिन के दर्शन से नहीं होगा, बार बार दर्शन करने से हरि कथा सुनने से ही होगा। साधु संघ में यदि हम जाते हैं साधु कोई यदि वो शुद्ध कोटि के साधु हो साधक हो भागवत हो तो कोई कथा ना बोले भी तभी उनके पास में जाने से ही अपने आप पवित्रता है, जैसे सुना है अगस्त ऋषि के आश्रम में कोई भी जाता था सब प्राणी में तो अहिंसक हो जाता, संतों के पास में जाने से चित्त अपने आप आए, उनके हृदय से ऐसी कणें निकलती हैं भक्ति की किरणें निकलती हैं, क्योंकि लोगों के चित्त को पहुंचा। फिर आश्रम का तेज जहां रहता है उससे भी यदि गंध निकल करके दूसरों के वो दुर्गंध बना देता है तो क्यों नहीं सारे लोग किनमें बस्तु उनका आश्रम में करने से क्यों नहीं फल होगा, निश्चित रूप में फल होगा, ऐसा साधु संत का फल है प्रभु का, किंतु धीरे धीरे होगा। कहते गंगा के दर्शन से स्नान से चित्त पवित्र होता है, ये बात तो ठीक है, किंतु एक बार करने से नहीं होता, पुनः 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 सेवन करने से तब हो सकता है। एक महीना रहिए भोगों को छोड़कर शीत काल में मार्च के महीने में प्रयाग में रोज रोज स्नान कुछ चित्त पवित्र, साधुओं के दर्शन से अपने आप उसी समय में हो जाए जैसे साधु वैसे।
अच्छा गंगा के स्नान से वासना समाप्त हो
जाए, प्राप्ति होने का उल्लेख कैसा था वासना गुरु को बिना कैसे चला जाएगा,
साधु संगम में तो न काम धर्म दिया हम जस
चाहिए, जैसे ये शकर के इतने पुत्र थे जो मर गए थे उनकी वासना तो थी, तो गंगा के स्पर्श से ये वैकुंठ चले गए, कैसे चले गए वासना को भी दूर कर सकते हैं गंगा, क्योंकि भगवती ने भगवत संबंधी है भगवान की शक्ति है,
गंगा स्पर्श होने पर होगा दूसरे दर्शन से होगा,
तो साधु लोग उससे भी अधिक हो, किंतु साधु साधु होना चाहिए भाई, नामधारी ये सब नहीं। जैसे प्रयाग में जो ये होता है स्नान कुंभ का, एक लाख नागा पवार खाते हुए फसल खाए हुए बीड़ी सिगरेट सूखा चलाते हुए चलते हैं, हाथियों पर घोड़ों पर ऐसे चलते हैं, और कोई मिल गया ना और उनके राशन बाधा दिया तो बस पीठ पार करके बाहर कर देते, दो दरवाजा लोग बंद कर देते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं और जहां घाट पर स्नान कर घाट पर कोई जाएगा नहीं, स्नान करके जब चले जाएगा, ये लोग साधु नहीं पीवे, साधुता से कोई भी संबंध नहीं, इनका संग करने से वैसे ही गजेड़ी फलेड़ी बदमाश लोपस और अहंकारी बन जाएंगे, ये सब साधु चित्त जिनका निर्मल है भगवान में जिनका चित्त है ऐसे लोगों का संग होने से उन्होंने बोल रहा है दस पांच दिन यहां पर रहिए, पांच साल दिन पांच साल जब करो माधन तब शुद्ध है मोल एक दुष्ट मान तब हमारा मन दुष्ट होगा। साधु संघ में भी जिनके मन के ऊपर में अधिक कामनाएं वासनाएं और कामनाएं हैं वो दो एक दिन में साधु संघ से नहीं होगा, एक तो साधुओं की बातों को ग्रहण नहीं कर सकेगा, साधु संघ में रहते लोग धीरे धीरे कुछ दिन रहते रहते दो चार वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष रहे और सचमुच में हृदय निर्मल करके उनकी बातों को ग्रहण करने की चेष्टा करें और आचरण में उनकी बातों को लाए, साधु संघ यदि ठीक से होना एक मिनट में भी उसका चित्त हो सकता है, ऐसे भी उसको उदाहरण इसलिए कहते हैं यहां तक उसकी नई नई पदारायण के उपस्थान में लिया तो पता है जात स्थान
गंगे न ही दैते जादू धाना गुलाम
भेजा
अवसर असुर नाया चार
मनुष्य की तो बात क्या है, ये सब जितने भी असुर नाग किन्नर देवता जक्ष असुर मनुष्य पशु पक्षी की पतंग ये महाराज दशरथ की कृपा हो गई तो जटाई जी हनुमान जी का संग है आकर विभीषण सुग्रीव ये सभी उत्पन्न हो गया, बड़ा महाराज जी का संग हुआ तो असुरों के जितने देव जितने बालक थे वो सब लोग इसी तरह, इसलिए साधु संघ में चित्त स्थिर करके रहना चाहिए और और कुछ यदि नाकेदीप्त करे सुतान प्रसन्न भवेद के संबित करण रसायन तजो सनात आशु अपवाद वर्तमि सदा भक्ति। बस उनके संगमरमर कथाओं को सुनता रहे, अपने आप जो कुछ करना होगा वो हर करना करा क्रमश उसमें साधन भक्ति भाव भक्ति और अंत में किसी भी स्थिति में साधु संघ छोड़ा न जाए, ये हमारे ऊपर में निर्भर है। देखो जो उसका फल जरूर होगा
यद्यपि विच्छेद
विच्छेद तुम्हार सहन न जाए तथापि दंडों का परी चली जा रहा, जब तक दोनों को दोनों नहीं छोड़ना चाहते, नारायण छोड़ना चाहते हैं और महाप्रभु उनको छोड़ना चाहते हैं। बड़ा विशाखा का संग आज बहुत दिनों के बाद में हुआ, उसको कृष्ण कैसे छोड़े ना? और उधर कृष्ण का संग हुआ है बहुत दिनों के बाद में, तो विशाखा जी उनका संग कैसे छोड़े? किंतु फिर भी नरलीला है ना, नरलीला का अनुरूप छोड़ना, इसलिए दोनों नहीं छोड़ने थे भी तथापि राय रामानंद जी ने उनको दंडोत्या सन्यासी के लिए तो राय रामानंद का उम्र बहुत अधिक है, किंतु वर्ण और आश्रम की दृष्टि से महाप्रभु जी सन्यासी है, ब्राह्मण है और वो राजा है, विषयी है और शुक्र इत्यादि, इसलिए उनको प्रणाम किया। किंतु भक्त लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग का जहां पर राय रामानंद जी और वो खड़े हो ना, तो हम तो पहले राय रामानंद जी को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, ऐसा ही होना चाहिए। पर पुजारी थे विप्र भरे भिक्षा विप्र घर में, किंतु सोच क्या रहे हैं, दूजना उपक्रम था आशी क्षण था उधर, वो उधर गए राजस्थान जी में राजभवन में और ये आए ब्राह्मण के घर में और भी शांत करने लगे, किंतु उत्कंठा क्या उत्कंठा हो गई,
कब मिले
कब 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 शांत जा, अब बीती नहीं गया, बीती नहीं गया, कब वो संध्या होगी और कब वो आएंगे और फिर हरि कथा, और रामानंद से कब संध्या हो तो मैं वहां जाऊं और हरि कथा हो तुम से मिलन, ऐसे ही उत्कंठा कब संध्या हो कब 6 बजे और हम लोग कथा सुनने के लिए जाए, अच्छी अच्छी कथा। तो ऐसे ही इनके हृदय में दोनों उत्कंठा, भक्ति के लिए हरि कथा के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, तब ये हरि कथा ही भक्ति है। हरि कथा क्या है, भक्ति को उत्पन्न करती है ना, भक्ति है यही स्वरूप सिद्धा है। जिनको हरि कथा सुनने से भक्ति होगी उनकी भक्ति अभी स्वरूप सिद्धा नहीं है, वो भक्ति का मर्म नहीं जाने, जिन्होंने हरि कथा को ही भक्ति मान लिया वही विचार थी, ये हरि कथा समझ यही भक्ति, और किसी के लिए जो भी साधन है जिसको रुचि तैयारी नहीं है, जिनकी रुचि उत्पन्न हो गई है उन लोगों के लिए वो और 1000 साधन छोड़ करके हरिनाम करना छोड़ करके भी हरि कथा में आएंगे, क्यों हमारा नाम जो है अभी नाम हो रहा है कि नहीं, हमारा भजन करना भजन हो रहा है कि नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है, हमारा अधिकार रहता नहीं, जो कथा सुनता हूं वो तो हमारे अधिकार की ऊपर की बात है, इसे हमारा बहुत कुछ लाभ होगा, ऐसा समझ करके हरि कथा सुनना चाहिए। दूजना उत्कंठा आशी संख्या है, जिसका तात्पर्य ऐसा मालूम हो रहा है उनकी उत्कंठा देख करके ही मानव संख्या जल्दी से होगी, दूजना उत्कंठा आशी संख्या है संख्या, किंतु उनकी उत्कंठा इतनी है कि वो सब समय चिंता कब शाम हो कब शाम हो और कब से करते जब शाम हो, मां प्रभु जी क्या कर रहे हैं वो तो जल्दी से आ जाएंगे, वो तो आ गए राय रामानंद, महाप्रभु प्रभु स्नान कृत्य करी आखिर बस गया, पर बैठे हुए किस लिए बैठे हैं? स्नानिया तो सवेरे की बात हो रही है नहीं, ये संत लोग विशेष करके जो वानप्रस्थी होते हैं और संन्यास हैं, इन लोगों के लिए तीन बार स्नान की विधि है, चाहे शीत हो चाहे ग्रीष्म हो चाहे जो तीन बार, तो तीन बार स्नान करो। तो सवेरे का स्नान तो कर लिया है, महाप्रसाद भी हो गया, इसके बाद में दो बार का भी हो गया है, अब ये तीसरे समय संध्या का समय का भी वो स्नान कर रहे हैं, स्नान करके आंधी करके और तब वो बैठे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु स्नान कृत्य करी आखिर बसिया एक नित्य संगे राय मिली राज, केवल एक भक्त को संग में और किसी को भी नहीं दिया, भक्त को दिया, लेकर के साधारण देश में आए, कैसे वेश राजकीय देश में नहीं आए, एक कपड़ा धोती पहनते, धोती का एक भाग लपेट लिया एक कमर भर, और उसी को लंबी सी धोती होती है उसको ऊपर से ले लिया, साधारण रूप में ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही करते थे, साधारण ऐसे ही वो काम होता, इसलिए लंबी धोती इसलिए होती, और उसके साथ में प्रणाम कर सकते हैं, साष्टांग प्रणाम, शरीर खुला रहता है, सब प्रकार के कृत्य को करने की सुविधा है, बस उसी रूप में साधारण से साधारण वेश में एक वस्त्र में। नमस्कार पैदा प्रभु पैदा अनिम तू जिन्हें कृष्ण कथा कैसे रामानंद ने उनको प्रणाम किया, महाप्रभु ने देखा जरा रामानंद आ गए, उठ करके खड़े हो गए, अब वो झुक करके प्रणाम करेंगे दंडवत वो जानते हैं, इसलिए उसके पहले ही झट कुछ आगे बढ़ करके उनको पकड़े और बच्चों लोग किसी को इस प्रकार से प्रणाम नहीं करने देते, यदि बराबरी का हो या उच्च हो कोई तो उसको सच जो उच्च व्यक्ति होता है, मान ले के एक महापाल दूसरा एक महापाल होता है तो दोनों का मिलन कैसे होगा, वो सख्त भावास्थित कुछ होते हैं, पर एक दोनों में तारतम्य तो कुछ जरूर होगा, किंतु दोनों महापाल होते हैं, जैसे रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों मिले क्या होगा, दोनों में कौन और अधिक और बड़ा, हम लोग तो विचार नहीं कर सकते, अच्छा कुछ विचार है तारतम्य किंतु वहां पर विचार का नहीं कर सकते, दोनों जब मिलेंगे ना वो उनको प्रणाम नहीं करने देंगे, वो सुप्रणाम दोनों आलिंगन नमस्कार करेंगे क्या कर बस इतना। प्रीति के लिए हम लोग का कभी कभी होता बिना प्रीति के ही प्रणाम कर, दंडवत प्रभु मुख से दंडवत प्रभु, अने जब तो ऐसा किया सिर भी मट्टी में ठेका कि नहीं ठेका कोई भी बात नहीं, कदे क्यों आया बेटा का ये चला जाता था, चाय यहाँ पर खाएगा पिएगा, खंजर बढ़ा दिया अजय कंडो भी खा देते, ये प्रणाम का कोई मतलब नहीं। अब दोनों ने कथा आरंभ हुई, हम लोग की कथा आरंभ होगी कुशल से है, अच्छा भाई देखो आ जाओ उनको दिया पानी में पिला दो तो भोजन करके तो आए नहीं हो, उनको भोजन कराओ सब ये है भी, किंतु यहां पर जहां पर भक्ति का विचार होता है वहां पर पहले ही और कोई चर्चा ही नहीं हुई, महाप्रभु जी ने एकदम आरंभ कर दिया हरि कथा, प्रभु कहे पड़ोस लोग साथ राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति का, बहुत सावधानी से सुनेंगे विचार करेंगे और अपने जीवन में भी आचरण करेंगे तब तो ये काम है, और विचार नहीं किया सुन करके बस छोड़ दिया नहीं हमको सुना नहीं तो बस नहीं सुना, इसका लाभ उठाओ, चैतन्य चैतामृत का ये सुंदर सबसे चिंतामणि रत्न है। ये यदि कोई समझ लिया और फिर इसकी उपलब्धि के लिए चेष्टा रही, उसको विज्ञान में परिणित करने के लिए तो बहुत सहायक है, बहुत सहायक है। इसे झट भक्ति का आविर्भाव होगा। तो प्रभु कहे पर श्लोक सात फेर में पर श्लोक साधन, ऐसा कोई श्लोक बताओ जिसे साध्य का निर्णय होता, ऐसा श्लोक बताओ। उन्होंने ये कहा साध्य जो वस्तु होती है जीवन के लिए ये अप्राकृत है। जो सबसे उन्नत साध्य है, जिनके बहुत से साध्य और साधन नहीं है, एक ही साध्य है किंतु उसके ऊपर में जीव के ऊपर में स्थूल और लिंग शरीर का आवरण होने से अभी बहुत तरह के साध और साधन बने, एक ही नहीं लाख तरह के साथ बने। और पहले सुनील जैसे साध के श्लोक कहते हैं साधन के श्लोक, साध उसको कहते हैं जिसकी हम अभिलाषा करते हैं और अभिलाषा करके जिसके लिए हम तरह तरह के उपाय करके जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं उसको कहते हैं साध। जिस चीज की हम अभिलाषा जिस वस्तु की करते हैं और उसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने पर वह वस्तु जब मिलती है उसको कहते हैं साध। और उस साध्य वस्तु को पाने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं साधन। ये साधारण सुधार यहां पर नारायण और महाप्रभु में जो विचार विनय हुआ इसमें वर्णाश्रम धर्म से लेकर के अंतिम सोपान गोपी भक्ति, गोपियों की भक्ति तक जो ले गए वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि एक सूर्य एक सोपान बतलाया, जैसे गीता में गीता जो है ना अलग अलग साधन नहीं है, उसमें पहले कर्म फिर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये एक ही सोपान में क्रमशः नीचे से ऊपर तक श्रेणियां चली गई, उसमें तो है। किंतु यहां पर किसी से किसी का अपना संबंध नहीं है, ये सभी पृथक पृथक चीज है। इसे बतला करके हम समझाएंगे सोपान नहीं है, एक क्रम से नहीं बतलाया, जैसे आदर श्रद्धा तथा साधुचन अपभजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब क्रम है। इसके बिना एक के आप उल्लंघन करके नहीं जा सकते, किंतु इसमें ऐसा नहीं है। एक एक साधन एक एक साधन है? अब जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, सबसे उत्तम जीव के लिए साध्य और साधन क्या है इस पर विचार करने के लिए हम सबसे श्रेष्ठ। तो जीव का पहले स्वरूप निर्णय कर, जीव है कौन, ये शरीर जीव है ना दूसरा कुछ है। यदि शरीर जीव है तो इसके तो बहुत से साधन है, इसको खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, इसको कुछ रुपए की जरूरत है, इसको कुछ सगे संबंधियों और विवाह से इत्यादि की जरूरत है, बहुत तरह की इसकी जरूरत है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ हम करेंगे वो साधन होगा, और जब वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो हमारे लिए वो साध्य हो जाएगा। किंतु शरीर हम है नहीं, इसलिए शरीर का भोजन आच्छादन और शरीर का भोग यह अंतिम साधन नहीं है, साध्य नहीं है। मोक्ष को मोक्ष भी साध्य हमारा नहीं, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास ममई वांशो जीवलोके जीव का सनातन जीव भगवान का अंश, और भी समस्त शास्त्रों में यह सही बतलाया गया, जीव से वफ है और भूत से स्वरूप से। अब स्वरूपगत जो जीव की भगवान के प्रति सेवा है, यही हमारा मूल साक्ष्य। स्वरूपानुबंधी भगवान की सेवा ही हमारा कर्तव्य है, स्वरूपानुबंधी होना चाहिए। स्वरूपानुबंधी मैंने अभी हमारा जो ये रूप है ये स्वरूप नहीं, इसलिए इसकी आवश्यकताएं हैं हमारा साध्य नहीं है, अच्छी तरह से समझ। मोक्ष इत्यादि जीव का काम में नहीं है, वह स्वरूपानुबंधी नहीं है, इसलिए जहां तक यह भाव नहीं आया तब तक महाप्रभु जी ने कहा यू बाहरी। जहां उसका कुछ भाव आया यो है, और जहां पर पूर्ण रूप से आया वहां पतन की है स्वर्ग, और जब उससे भी अंतिम चरण आया तो यह सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम। इसलिए जीव का स्वरूपानुबंधी स्वरूप संबंधी जो अपना भाव है भगवान के प्रति, अतः तो भगवान को उसको प्रसन्न करना, भगवान की स्तुति विधान करना, वो जो है वही जीव का नित्य। मोटा मोटी ये समझ लो भगवत प्रीति ही जीव का चरम साधन। इसलिए चैतन्य चैतन्य ने कृष्ण प्रेम को बताया चरम प्रयोजन, ये चरम प्रयोजन ही जीव के लिए साधन। अब यही चरम प्रयोजन भी प्रेम को कह दिया एक शब्दों में, किंतु पांच प्रकार के प्रेम हैं, उन पांचों प्रकार में से सबसे श्रेष्ठ है मधुर। और वो भी कितने प्रकार का है, बहुत प्रकार, उसमें से तुम्हारा क्या स्वरूपगत है उस पर विचार किया। तो यहां कह रहे हैं पवस्तु अचिंता के खु भावा मनोकांक्षा के न जो दे प्रकृतिभ्या परम जत्य जब अचिंत लक्षण। संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं साध्य और साधन, इस पर तो हम विचार करते हैं। जैसे हमको रुपये की जरूरत है तो या तो वाणिज्य व्यवसाय करेंगे, नहीं कहीं नौकरी करेंगे, नहीं चोरी चमारी डकैती करेंगे, यही तो और क्या उपाय है। यदि हमें नौकरी करने की और नौकरी नहीं हो रही है वाणिज्य व्यवसाय करने की, वाणिज्य व्यवसाय भी करने के लिए पैसे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आपके, कोई नौकरी नहीं मिल रही, वाणिज्य व्यवसाय भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे। और जैसे आजकल के बच्चे सब क्या करते हैं, डकैती चोरी लूट मार ये सब करते हैं, आजकल की शिक्षा भी रहती है, तो वो चोरी कैसे करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से आजकल सीख करके करते हैं, ताला को किसी चीज से छू दिया और वो हर घर के नीचे गिर गया और अपने आप गिर गया, और उसके पहले ही जंगले से कोई चीज थोड़ा सा पंप कर दिया इंजेक्शन से और वायु वहां का ऐसा हो गया जो मूर्छित होकर सोए रह गए और घर से सब कुछ निकाल करके वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ। ये सब तो हो जाएगा, सिर्फ जो अप्राकृतिक चीज है प्रेम भाई, ये अपने मन से नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं अचिंता के खल भावा न तान करके जो साध्य और साधन इस जगत संबंधी है वो तो हम कर लेंगे अपने विचार से और दूसरों के विचार से कर लेंगे, किंतु जो अचिंत अलौकिक है अप्राकृत जो है उसके लिए शास्त्र का प्रमाण ये चाहिए। क्यों, शास्त्र अभ्रांत है, वो भी सब नहीं, वेद उपनिषद पुराण स्मृतियां और उनके अनुकूल जो शास्त्र होते हैं वो रामायण महाभारत और इन सब में मूल प्रमाण श्रीमदभा क्यों? ये भगवान ने अपने पानी के लिए कृष्ण प्रेम को पाने के लिए अपने मुख से जो उपाय बताए उनको भागवत करने का भगवान के वचन में कहीं भी भ्रम प्रमाद की प्रतीक्षा करना पा रहा हूं नहीं ये कल नक्षत्र ने बताया था विचार न किसी को ठगना चाहते हैं वो स्वाभाविक रूप से सत्ता करना चाहते हैं उनकी इंद्रियां अपटुल अटक दूर और थोड़े के कोई प्रश्न नहीं हम तो यहां से देखेंगे वो आ रहा है यहां आएगा तो देखेंगे और दूसरा है इस तरह से भगवान में न कपटता है न इंद्रियां उनकी शिथिल है न उनमें भ्रम प्रमाद हो सकता है इसलिए उनके शास्त्रों के मूल वेद वेदांत परिषद के मूल कौन है जहां पर स्मृति और श्रुति दोनों में विवाद हो तो वो कौन सा मान्य है क्यों स्मृति स्मार्ट ऋषियों के बनाए हुए हैं वो कुछ चीज अनुभव करके अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है उस अनुभव प्रमाद हो सकता है किंतु भगवान की जो बतलाए हुए हैं उनमें कोई दोष नहीं इसलिए वेद सबसे अधिक वेदों का भी सार एक महानुभाव नारायणी स्वयं मंथन करके मंथन करके उसके असार चीजों को दूर करके श्रीमद्भागवत रूप में उसको स्थापित इसलिए निर्मल इसलिए जितने भी प्रकार के प्रदान हैं जितने प्रकार के वेद परिषद हैं सब में प्रमाणित है श्रीमद्भागवत का बात यदि वो ठीक करते हैं परमार्थ के विषय ये परमार्थ का विषय है तब तो उस पर प्रमाण कर मात्र बुद्धि यही करते हैं जब शास्त्र विधि उत्तीज्य वर्तते काम आचार न सिद्धि आत्मोति न सुखम न परान मति जब शास्त्र विधि उत्तीज्य जो शास्त्र की विधियों को छोड़ करके एकांतिक भक्ति भी करते हैं उत्पात भक्ति अनन्य कर रहे हैं पूजन खूब कर रहे हैं बिना देवताओं की उपासना किए हुए मुख में अन्न जल चाहे संध्या तक हो जाए नहीं ग्रहण करते रात रात भर जागरण करते हैं सब कुछ करते हैं किंतु शास्त्रों के अनुकूल नहीं करते तो क्या होगा एक उत्पात ही भी उत्पात हो जाएगा यहां पर वही करें जब शास्त्र ये गीता करें जब मैंने जो लोगों शास्त्रों की विधियों को छोड़ करके काम आचार पर स्वतंत्र अपनी इच्छा से जो करते हैं न सिद्धम हुआ उनकी सिद्धि नहीं होती न सुखम सुख भी नहीं होती न पारायण परमार्थिक गति भी नहीं होती और ये कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित पारमार्थिक कार्य के लिए व्यवस्था किसमें है शास्त्र सत शास्त्रों में उसकी व्यवस्था नहीं गीता भागवत रामायण उपनिषद वेद जिस बात को कहते हैं उस बात को सही मान करके उसी पर चलते जितनी भी लोग कट्टी पैखाना करते हैं और हार होते हैं अपवित्र होते हैं किंतु वेदों में श्रुतियों में यह कहा गया है गोबर परम पवित्र है और संख यह हार है किंतु ये पवित्र चमड़ा अपवित्र है किंतु मृदंग ठाकुर जी के घर में जा सकता है तो इसी तरह से ये शास्त्र के बारे में क्यों विचार करते गोबर इतना पवित्र है ऐसे नहीं समझेंगे वैज्ञानिक तरीके से जब देखेंगे ये शास्त्र में ये ठीक कहा गया स्वयं भगवान अस्थि को देते हैं संत बजाते हैं भक्त लोग भी इसका व्यवहार करते हैं इसलिए शास्त्रों की बातें मान करके ही चलनी चाहिए इसलिए चैतन्य महापुरुष जाते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य कार्य और कार्य में जहां को संशय होता है शास्त्रों में जो चीज बातें दिखी हैं उसी को मानते विशेष करके साध और साधन में तुम प्रमाण जो कुछ जो दो कहते हो उसका शास्त्रीय प्रमाण, विशेष करके श्रीमद् भागवत का प्रमाण सभी कह रहे हैं। प्रभु कहे पर श्लोक साध्य में जीवों के लिए परम साध्य क्या है आप ये बतलाए। ये नीचे से चल रहे हैं, कर्म से तो नहीं किंतु नीचे से चल रहे राय। स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति कर अपने अपने वर्ण और आश्रम से जिसके लिए शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं कि वर्णों के धर्म ये हैं, आश्रम वालों का धर्म यह जैसे ब्राह्मणों का धर्म चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चार आश्रम है गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी संन्यास। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्राह्मणों के कुछ कर्म निर्धारण किए पढ़ना जजन जाजन अध्ययन प्रकार दान ये जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करता नहीं कराता सदा सदाचार संपन्न नहीं होता भगवान का भजन नहीं करता वो ब्राह्मण ब्राह्मण होगा। ब्रह्मी विचरती सब केवल उपवीत धारण करने से या ब्राह्मण के कुल में जन्मे हैं इससे नहीं, इसलिए अपने वर्ण और आश्रम जैसे गृहस्थ है गृहस्थ में चार व्यक्तियों का गृहस्थ ब्राह्मण भी होती गृहस्थ ब्राह्मण भी हो सकता है क्षत्रिय भी होगा वैश्य भी शुक्र ये गृहस्थ और वो चार प्रकार के ब्रह्मचारी भी होंगे उन्हीं में से और सन्यासी भी उन्हीं में से ही सभी उसी में से आएंगे और सबका रूप जो है कौन है गृहस्थ सबका पालन पोषण करने वाला कौन है वो गृहस्थ। इसलिए कहीं कहीं पर गृहस्थों को सब आश्रमों का और वर्णों का भूत बतला दिया
गृहस्थ बड़े हैं बड़े हैं या सन्यासी
मूल बतला है
और लोग झगड़ा करते हैं बोले हम गृहस्थ बड़े हैं
हाँ तो ठीक है बड़े हीरा निकलता है बोले कि खान से तो हीरा तो खान बड़ी है या हीरा बड़ा है अपने अपने स्थान पर जिसमें भक्ति है वही बड़ा तो गृहस्थों के भी कुछ धर्म है कोई भी अतिथि आए उसका आदर सम्मान दान देंगे और भगवान का भजन करेंगे ये सब ब्राह्मण के कुछ लक्षण हैं। कुछ वानप्रस्थियों के कुछ ब्रह्मचारियों के सन्यासियों के सब लक्षण इनका भी कुछ बतलाया गया है वानप्रस्थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इन सबका बतलाया गया है शास्त्रों में और उसमें कहते हैं स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति पर स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है हमारा वर्णाश्रम धर्म ऐसा बनाया गया है जिसमें अपने आप आचरण किया जाए तो विष्णु भक्ति होने की संभावना होती है हो ही जाएगी कोई गारंटी नहीं किंतु होने की संभावना नहीं भी हो सकता। तो यहां पर उसी के लिए कहा गया श्लोक पढ़िए तो उसने विष्णु पुराण का यह श्लोक उन्होंने दिया बड़ा समाचार पर पुरुष पर कुमार विष्णु आराधे पंथा नन्नपत्तो साधारण इसका अर्थ यह हुआ है वर्णाश्रम धर्म में जो आचरण करता है सचमुच में ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है वर्ण और आश्रम ऐसे पुरुषों के द्वारा परम कुमार जो पर वस्तु भगवान है मनुष्य मात्र जो इन वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है उसके द्वारा उस पुरुष के द्वारा भगवान विष्णु आराध्य
नन्नत तक और कोई दूसरा उपाय नहीं है
यहां पर बताया
निष्ठा उत्पन्न करने की। इसलिए अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे भगवान
महाप्रभु जी ने कहा कि वो बात आगे है।
ये बात क्यों कहा? पहली बात हमने पहले बताया साध्य और साधन होना चाहिए स्वरूपानुबंधी। हम जीव स्वरूप हैं इसलिए जीव मुक्ति भी इसी को कहते हैं। मुक्ति ही तो अन्य था रूपम अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम ही यही स्वधर्म है। अपना धर्म है भगवान के प्रति प्रीति का। समस्त जन्मों में अपना अपना वर्ण आश्रम धर्म सब बदल जाएगा किंतु एक चीज नहीं बदलेगा वो क्या थी? जैसे कोई मुसलमान है हिंदू है गाय है बैल है मनुष्य है स्त्री है उसके अंदर में जो प्रीति भाव है अपने बच्चों को प्यार करना दूसरों को प्यार करना ये नहीं बदल सकता। ये जरूर रहेगा किसी भी स्थिति में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएगा मुसलमान हो जाएगा मुसलमान से हिंदू हो सकता है बौद्ध हो जाएगा गाय बैल हो सकता है किंतु गाय बैलों में भी अपने बच्चों के प्रति प्रीति होती है मनुष्य में भी होती है देवताओं में होती है सर्वत्र होती है। ये जो प्रीति है यही यथार्थ में असल वर्ण और आश्रम धर्म में इसी को लक्ष्य करके ये बहुत दूर से बतलाया गया है। वैसे तो हम देखते हैं जब विचार करते हैं वर्णाश्रम धर्म के लिए कहा गया एक तो सब अच्छाई आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन भैया लय वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर के भगवान का भजन करो वर्ण और आश्रम और भी कहीं कर सम क्या जस और धर्मान जो अपने सब सधर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करता है उत्तम पुरुष है। सर्वधर्मान प्रत्यजमा एकम शरण ये सब कहा गया और यहां ये कह रहे हैं बड़ा संधर्म का अच्छी तरह से पालन करने वाला व्यक्ति पालन करता हुआ भगवान विष्णु की जो आराधना करता है यही उनकी प्रसन्नता का एक मान कार्य है और दूसरा। अब ये दोनों में जो भेद बतलाया एक में कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से नहीं होगा इसको छोड़ो और एक कहते हैं यहां पर विष्णु विष्णु की प्रीति से होगी तात्पर्य क्या इसका भी कौन साइज कैसे हम लोग करेंगे इसका सामंजस्य कैसे करें। यहां पर ये कहते हैं ये लोग विष्णु पुराण से उसके बाद ही में एक और श्लोक आया है उसी श्लोक में है जो जब सुना श्लोका ने उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा जिसको वो सुना रहे विष्णु पूछा अच्छा ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन आप जो कर रहे हैं करने से और उसमें विष्णु की आराधना होती है उसे भगवान की आराधना हो जाती है और उसे उससे क्या होता है उसका फल क्या है पर वो बतला फल होगा क्या संसार में वो व्यक्ति सुखी रहेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और वो चाहे ठीक ठीक पालन करे तो उसको संसार से मुक्ति भी मिल जाए। ये तीन चीज बतला किंतु तीनों में से कोई भी जीव का संतान बदली नहीं है। यहां पर यह विचार करने का एक बात हिंदू में ऐसी प्रथा थी अभी तक प्रत्येक हिंदुओं के घर में शालग्राम शिला इत्यादि अब लोग उसको ब्राह्मण पूजा अंत तो ब्राह्मण जरूर पूजा करते और छत्री लोग आकर के ब्राह्मणों के घर में उनकी पूजा देते थे उनको प्रणाम करते थे नहीं तो अपने घर में भी ब्राह्मण वैश्य और छत्र ये तीनों ही पूजा करने के अधिकारी दीक्षा लेने के बाद यहां तक कि स्त्रियों को भी तो बताया गया
स्त्रियां
तो ये लोग कर सकते हैं। शूद्रों के लिए इसमें कहा गया कि अखंड शोक में बंध रहते हैं और उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके लिए नहीं कहा। किंतु यहां पर शूद्र का विचार करेंगे नारद जी जैसे लोगों के लिए गुणगत, तो वो लोग करने के लिए योग्य। हम लोग किसी भी हालत में देखेंगे विश्व में कहीं न कहीं सर्वत्र
हरिभक्ति विलास में सत्सूत्र
किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम धर्म जरूर है। जो लोग विद्या का अध्ययन करते हैं, जिनमें उपकारिता है, सत्यवादिता है, ये लोग ब्राह्मण स्वभाव ये लोग ब्राह्मण है। जो लोग युद्ध प्रिय है, शासन में रहते हैं, शासन करने वाले सूर्य वेद इत्यादि में दान देते हैं लेते हैं, ये लोग क्षत्रिय भले इनका नाम न हो क्षत्रिय। हम लोग के यहां ये वैज्ञानिक पद्धति से उनका नाम दिया गया, और लोगों ने ये ऐसी पद्धति ने ही जो नाम दिया। जो लोग दान देते हैं, कृषि पालन करते हैं, पानी के व्यवसाय करते हैं, ये लोग हैं जो तीनों और सब लोगों की सेवा करते हैं और उसे अपनी जीविका का संग्रह करते हैं, जीविका का निर्वाह करते हैं, ये लोग हैं। इसलिए विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर कि वर्णाश्रम धर्म नहीं है, कहीं किसी का नाम है और कहीं कहीं पर किसी का नाम है। तो जहां उन वर्णाश्रम धर्म में भगवान की आराधना हो तब तो वो सार्थक हुआ, तब तो भगवान उसे कुछ प्रसन्न होंगे। अन्यथा जिस वर्ण और आश्रम में हिंदुओं में भी जिन घरों में भगवान की पूजा नहीं है, विष्णु की पूजा नहीं है, शालग्राम की पूजा नहीं है, तो वो कैसा है स्मशान। इसलिए यहां पर उन्हीं के लिए बातें बतलाई गई, वर्णाश्रम धर्म में स्थित करा करके विष्णु की उपासना करते हैं
एक बार 24 स्कूल में ऐसे आए
ब्राह्मण होकर के भी चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वस्व कर्म करते से चारों वर्ण और आश्रमी यदि अपने वर्ण में स्थित होकर के भी अच्छे अच्छे सब सब कामों को करते हैं किंतु भगवान की आराधना नहीं करते, विष्णु की पूजा नहीं करते, तो वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते, नरक में उनको जाना। सब माता पिता की सेवा करते हैं, पति की सेवा करती है, पत्नी के प्रति उनका व्यवहार ठीक है, संसार में खूब दान लेने देने वाले। कर्म जो था वर्णाश्रम धर्म का पक्का मानने वाला था, ब्राह्मणों को भी पूजा करता था, घर में ठाकुर जी भी है और अपनी मैया को भी खूब आदर, बिना मैया का चरण छुए हुए कहीं नहीं जाता, उसने मान लिया है उसको राधा को अपनी मैया, बिना उसके आदेश के कुछ भी नहीं कर। कुंती जी भी जाती हैं जर्सुना जो मैया है उनके प्रति श्रद्धा की, किंतु कहा गया अब मैं तुमको मैया नहीं मानता, अब तो मैया मानता हूं जिसने हमारा पालन पोषण किया उसी को मान। सीधी उससे बात थी, उसने कह दिया, इतना दानी था कि प्राण के संकट आने पर भी जानता था, मरने पर आया गया, कोई ब्राह्मण आ गया मर रहा था, उसी समय में दिव्यमूर्ति में आ रहे थे, उस समय कोई ब्राह्मण था आया बोला हमारी लड़की की शादी है, मैं आपके पास कुछ दान के लिए, अब मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं, मैं राजा था उस समय मैं आके दे देता, अरे अभी आपके पास में और लोगों के पास में जो और नहीं दे सकते, क्या चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मेरे पास सोना था, आपके दांत में सोना लगा बस उसने फिर ऐसा मारा और दांत गया और उसको दांत उसके सब सुने के बना लिए, उसे मरिया सब जड़ी हुई। इंद्र को अपना कवच और कुंडल जो जन्म के साथ में जन्म रहा था उसी दी, किंतु हुआ क्या, भक्त और विष्णु का बस गड़बड़ हो गया। जरासंध महाराज शिवी से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, अपने प्राणों को दे दिया एक कबूतर की रक्षा के लिए, उनको मिला क्या
स्वर्ग।
राजा हरिश्चंद्र जी अपने बाप के बड़े धनी थे, अपनी बाप के लिए अपनी स्त्री को शूद्र के यहां बेच दिया, अपने शूद्र के यहां बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, यहां तक कि अपने बेटे को जब मर गया
तो उसके लिए कर्तव्य से चित्त न होकर के उसके लिए भी जलाने के लिए कर मांगा, ऐसी दृढ़ निष्ठा। बड़ाश्रम धर्म के नियम ही ऐसे हैं सप्तपदी के, किंतु फल क्या हुआ? दधीची का नाम सुना, उन्होंने अपने जीते जीते गाय से चटवा कर दही और बुरा लगा करके चटवा करके जीते जी अपना हार दे दिया इंद्र इत्यादि। फल क्या हुआ?
जी बार स्वरूपान बंदी है,
इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया कि वो बात आगे बस आज पंचागत
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रभुनाय कृष्णाय कृष्णाय गोदत्ते पञ्चाकल्पतितानं आदि
जीवन के लिए साध और साधन क्या है? उन्होंने कहा स्वभाव आचरणे विष्णु भक्ति है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जब मनुष्य जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है उसके अनुरूप अपने आवश्यक कर्तव्यों को पालन करता हुआ भगवान की आराधना करता है तो उसे भगवान कहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा तो इसका ये तात्पर्य कि विष्णु की प्रसन्नता ही यहां पर साध्य है और वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता हुआ भगवान की आराधना, विष्णु की जो आराधना होती है वही यहां पर साधन। महाप्रभु जी ने कहा कि ये बाह्य है, ये ठीक नहीं है। आगे आजकल साधारण रूप में हम देखते हैं कि महाराज मृग थे, वो क्षत्रिय थे राजा, तो उनका दान देना सुरता वृत्ता राज्य शासन दंड निग्रह इत्यादि उस राजा के लिए उचित है, ये वर्ण और आश्रम में है गृहस्थ इसलिए उनके लिए ये उचित। एक राजा है और विपक्ष है राजा क्षत्रिय, इनके लिए उचित है शुद्धता वीरता दान दया और शासन। उन्होंने देखा शासन अच्छी तरह से किया, राज्य में चारों तरफ सुशासन चल रहा है, जो डकैत बदमाश लड़पट एकदम चुपचाप शांत है, कुछ नहीं कर कठोर उनका का। और दान के लिए उन्होंने कहा था मैं रोज कोटि कोटि गायों का दान करूं, ये दान भी कर। और गायें ऐसी नहीं, सिंह सोने से बंधे और पैर में चांदी का फूल और अंगों में
सोने का झालर,
सुने की झालर लटकते हुए खूब सुंदर मूल्य कपड़े, नहले कपड़े, तो और ऐसी गाय जिसमें कहीं हाड़ न देखा जाए, बछड़े और बछड़ी समेत जो पूरी देने वाली गाय, ऐसे गाय को दे। आकाश के तारे नहीं गिने जाए, कभी गिन लिया जा संभव सकता है, किंतु कितनी गाय उन्होंने दान की ये कितनी गाय दान कर, ये इनका वर्ण और आश्रम के अनुसार में एक गृहस्थ का एक क्षत्रिय राजा का यह धर्म है उसको पूरा कर। आज तक वैसा कोई राजा नहीं हुआ जो ऐसा किया, किंतु अंत में इसका फल होना चाहिए अच्छा, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो इस लोक में तो सुख को कुछ अब देखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मण का गाय के लिए झगड़ा हो गया, गाय दान कर दी और वो दान गाय दान कर दिया और उस दल में से निकल करके वो बाहर चली गई। और फिर एक इनके संग्रह करने वाले गाय के जो था वो उस गाय को फिर ले आकर के राजा को दे दिया, इन्होंने फिर दोबारा दान कर दिया। तो जिसको पहले दान किया था वो और जो दूसरा दान किया था दोनों में संग्रह, ये गाय मेरी है तुम मेरी। राजा के पास में गए, राजा कहा ये आपने दान में दी थी गाय, ये मेरी है। वो कहता अरे अभी हमको आपने दान दी, बहुत झगड़ा लग गया। राजा ने कहा जी इसके बदले में तुम एक गाय ले लो तो प्रसन्न हो जाओ, एक गाय का लाख गाय देंगे तभी नहीं, हम तो यही गाय। और दूसरे ने भी यही कहा कि हम दूसरी गाय नहीं ली, यही गाय आप पृथ्वी का दान कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, तुमको गाय नहीं मिली। दोनों जीत पर आ गए। राजा ने कहा जी सब उसको नहीं प्रसन्न कर सकते, इसको भी प्रसन्न नहीं कर सकते। फल ये हुआ तुम लोगों ने इनको अभी संपाते जाओ तो गिरगिट बन जाए। गिरगिट ऐसे ऐसे कहता है और ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसा तू बन जा, देकर के तुम नहीं किया। अब वो गिरगिट होकर के हजारों लाख वर्षों तक उन्होंने बहुत विशाल गिरगिट हो सके। तो ये कर्म का फल हुआ, अच्छे कर्म का ये फल, अच्छा कर्म है तो इसका तो ये फल हुआ। राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी थे, उस सत्य के लिए उनको अपने बिकना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा, अपनी रानी को एक सूत्र के यहां चंदाल के यहां और वही श्मशान भूमि में रहने वाले ऐसे लोगों को तो बतलाओ था। तो ये कर्म जो मार्ग है इसका गुण दोष होने पर भी दोष इसके। दूसरी बात साधु उसको कहते हैं चरम अवस्था में, जिससे कि भगवान को प्रसन्नता हो, चरम प्रसन्नता हो। इसमें अपनी प्रशंसा के लिए, अपने अपने सुख भोग के लिए, स्वर्ग के लिए ये दिया जा रहा है। यहां पर माताएं दान करती हैं घरों में, कोई जाए तो कुछ दे, मिठाई दान कर दिया, कोई कुछ दे, उसका बीमार बच्चा है उसको ऐसा ऐसे आंख करके। अच्छा ये दान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? तो रोग दान हुआ जी, हमारा बच्चा अच्छा हो गया। अब इसमें ये दान नहीं होकर के ये अपने सुख के लिए हो गया, अपना बुरा भला जो कुछ था निर्मंथन करके लो तुम लोग भोग। तो ये तो पाप कर्म हुआ, किंतु अपने सुख के लिए इसे करते हैं और इसी को अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से ये कर्म ही ऐसा है, ऊपर नीचे और आदि अंत मत अशुभ है, इसलिए इसे साथ जो कल्याण है ये इससे नहीं होता। यही नहीं और भी देखा जाए, जहां जहां ऐसा कर्म है वो कर्मों की गति यही असस कर्म अपर्म, इसलिए उन कर्मों को महाप्रभु जी ने कहा कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसमें अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों से वहां उसमें एक प्रसन्नता की क्षीण लहर है, वो है क्या? यदि विष्णु की उपासना करें, किंतु वो विष्णु की उपासना भी करता है, यही ठाकुर जी उपासना जब हो जाएगी, ठाकुर जी हमारा थर सर अच्छा, हमारे दुख दारिद्र दूर है, वो भी अपने लिए मांग लेता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं, दे देते हैं प्रसन्न अपने लिए मांग लिया। इसलिए ये कहते हैं महाप्रभु जी यूं वाद्य आगे बाहर, इसमें धर्म कर्म नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं ना कर्म लोग विष्णु के प्रसन्नता के लिए, विष्णु की भी प्रसन्नता करते हैं, ठाकुर जी को फूल देंगे माला देंगे उनके चौपट को, ऐसा ऐसा करते हैं ना, दबाते हैं चौपट को, रंगेश्वर में चौपट को दबाते हैं, दबाते हैं, इसलिए करते हैं अपने लिए भगवान के लिए। महाप्रभु ने देखा जी आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है, आगे चलिए। कहा क्यों, संसार के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में ऐसा ही करते हैं, अधिकांश लोग वो धर्म कर्म नहीं भी जानते हैं तत्व से, और ऐसे करने वालों को लोग कहते हैं कि ये बहुत भक्ति करती है, कि भक्ति करता है साधारण, इसलिए इसे भक्ति का भगवान के माने आत्मधर्म से इसका कोई भी संबंध नहीं, इसलिए बताओ इसको प्रभु का यही हो बात के आगे कहा। रात है कृष्ण परमात्मा सब प्रसाद, राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण परमात्मा जो कुछ करो कर्म वो कृष्ण को अर्पण, उसका फल लेकर के भगवान को, और सर्वसाध्य सार समस्त साध्यों का ये सार है। इसमें एक बात है, कृष्ण का कर्म अर्पण या उसका फल अर्पण करना ये साधन है ना साध्य है, अभी तो साधन है ना, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण ये है साधन, किंतु इनको कह रहे हैं सर्वसाध्य सार, इसका तात्पर्य यही है इसके द्वारा जो फल मिलता है वो साध्य है। अब इस पर हम लोग विचार करें, महाप्रभु जी ने कहा यो बाह्य आगे का, ये भी बाहरी है, ये भी आत्मान संबंधित ना, ये कोई धर्म नहीं। अब इस पर चलते हैं, आप लोगों को याद होगा श्रवणं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सीवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यात्मनिवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन वलक्षणा क्रियेत भगवती अध्यात्म मन्ये अतीतम्। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुमने जो अध्ययन किया इसमें से सार तुमने क्या समझा वो थोड़ा सा हमको बतला दो, तो वो कह रहे हैं अभीत जो ऐसा अभीत मैंने अध्ययन किया है अर्थात जो समझता है कैसा विष्णु के लिए जो के संबंध में जो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आचरण अर्चन बंधन दास्य सप्त आत्मीय नौधा विभक्ति यदि इति पुंसार्पिता भक्ति ये नौलक्षणा भक्ति यदि भगवान के चरणों में अर्पित करके तब करते हैं तब तो ये भक्ति है, अर्पित किया नहीं तो भगवान का कथा सुनना भी ये नहीं। यहां अर्पित मैंने क्या इसको समझिए, यहां पर अपने को अर्पित करो कि मैं आपका हूं और आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा, मैं ये जो आपका आसन कर रहा हूं इसे आप प्रसन्न हो, हम बदले में कुछ चाहते नहीं, इसलिए अपने को ही अर्पण जिन्होंने कर दिया और करने के बाद में जो करते हैं तब तो भक्ति होगी अन्यथा भक्ति नहीं होगी। भागवत की कथा सुनने से ही ये भक्ति नहीं हो जाएगी, कब होगी? यदि अपने को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, पहले गुरु भगवान के यहां अपने को अर्पित करो, भगवान कभी मिल नहीं रहे तो गुरु रूपी जो भगवान है जो हमको ले जाना चाहते हैं उनके चरणों में अपने को अर्पित, मैं तुम्हारा हूं। यदि मैं उनका हो गया तो मेरा वस्त्र उनका हुआ कि नहीं,
सब
हमारा चश्मा उनका हुआ कि नहीं, यदि मैं ही हमारा घर उनका हो गया कि नहीं, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब उनके हो गए कि नहीं, यदि पहले ही मैंने अर्पण कर दिया इसलिए हमारा सब कुछ उनका हो गया, इसलिए मेरा किया हुआ जो कुछ है वो भक्ति हो जाएगी। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, समर्पित आत्मा नहीं है, वो लाख करते हैं उत्पात रेव या कुछ सुकृति होकर के पीछे पीछे फिर गुरु के चरणों में शरणागत होकर के दीक्षा इत्यादि लेकर करते हैं। इसलिए कहते हैं उस श्रेणी की तो ये है नहीं, अभी जो कहा कर्म आचरण, ये जो कर्म आचरण है पहले कर्म करके तब उसको अर्पण कर रहे हैं, एक ये स्थिति, और एक है पहले अपने को अर्पण करके तब फिर करते हो, ये दो बात है। जो लोग पहले अपने को अर्पित करके जो भक्ति का कर्म करते हैं उनकी तो भक्ति हो गई, जिन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया, एक आम का पेड़ लगाया ये कर्म है ना, उसके यहां पर बतला रहे हैं यद करोषि, गीता का यद करोषि यदश नाश यद्युहोषि यदाशी तद जब तपस्या कौनते तद गुरुस्व मदर, तुम जो कुछ करते हो जो कुछ स्नाशी खाते हो भोजन करते हो यज्ञोशी जो तुम हवन करते हो ददास जो कुछ तुम देते हो जब तपस्या जो तुम परिश्रम करते हो, तपस्या मैंने यहां पर सभी पूछा जो कुछ परिश्रम करते हो तपस्या करते हो एक अंते वो पुरुष मदार्पणम मदार्पणम पुरुष मुझे अर्थ। इसमें एक और भी बात है, भगवान को जब तुम शराब पीते हो तो भगवान को पहले शराब दे दोगे, चाय पीते हैं हम तो भगवान को पहले चाय देकर के उसमें तुलसी पत्ता देकर के पियेंगे, बंगाल में लोग मछली खाते हैं तो उसमें भी तुलसी देकर के भगवान को अर्पण किया जाएगा, इसलिए ऐसी चीजें अर्पण नहीं करनी है। शास्त्र विहित शास्त्र में जिन चीजों को भगवान को देने के लिए आदेश दिया ऐसी सात्विक वस्तुओं को भगवान को अर्पण किया जा सकता है, तब ये कुछ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति हुई, अन्यथा भक्ति भी नहीं होगी। जिसको कहते हैं आरोप सिद्धांत, भक्ति तो नहीं किंतु उसमें आरोप किया जाता, तो वो सब जगह आरोप नहीं किया जाता, सब कर्मों में जिसको वेद शास्त्र पुराण स्मृतियां जिसको कहते हैं सब कर्म जिन्होंने व्यवस्था की है जीवन के लिए, ऐसे कर्मों का फल ही भगवान को अर्पण कर तब तो ये कर्म निश्चय हुआ, किंतु ये यत् करोषि अच्छा या बुरा जो कुछ तुम करते हो जदस्नाशी जो कुछ खाते हो जद्युहोषी इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जो शास्त्र श्रुति और स्मृतियों के द्वारा कहे गए वे भी कर्मों का ही फल भगवान को कोई इसमें नहीं, इसलिए ये तो वो जो आरोप सिद्धा बतलाया कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति वो भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जो लोग अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं, अनन्य भक्ति के बाद छोड़ दो, जो औपाधिक भक्ति जो आरोप सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति है उसके भी अधिकारी नहीं, ये किन के लिए है? जगत में तीन प्रकार के लोग मान लिए थे। एक मूर्ख कुछ भी अच्छा बुरा भला कुछ नहीं जानता, वो लोग वैदिक कर्मों को नहीं करते, भगवान का अर्पण करेंगे कुछ इसका प्रश्न नहीं है, वो तो अपने क्या अर्पण करेंगे। दूसरे होते हैं नास्तिक, वो जानते तो सब कुछ है किंतु उसमें विश्वास है वो करते नहीं, नास्तिक लोग जानते हैं। लोग कहते कहां जा रहे हो तो जमुना में स्नान है, जमुना में स्नान कर ठंडी पड़ी हुई है जमुना, उसमें जाएगा तो तुमको रोग इत्यादि हो जाएंगे, जमुना में क्या है, जैसे नदी में आए हैं वैसे नदी नाला है, ऐसा मत कहो। कहते हैं तो क्या कर, जमुना कोई देवी है, वो कहता है ये देवी है, उनका कहते नहीं नास्ती जो ईश्वरो नास्ती वेदाना, ईश्वर नहीं है वेद नहीं है वो लोग हैं नास्ती, उनके लिए ऐसे कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो करनी नहीं। और जो अज्ञ व्यक्ति हैं कुछ भी नहीं जाते विषयों में एकदम लवली है, उनके लिए भी भगवान के अर्पण के लिए कोई बात नहीं। और तीसरा है अनन्य वाले, अनन्य जो भक्त हैं वो तो जानते हैं किंतु उनको भी उनके लिए ये नहीं कहा गया जब करो से, अनन्य भक्ति वाले तो भगवान के लिए अपने को समर्पण करके और सब करेंगे, सब भक्ति का कार्य श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि करेंगे, गुरु के यहां दीक्षा मंत्र लेकर के विधिवत भगवान से संबंध ज्ञान रख करके अपराधों को दूर करके भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए नहीं। इनके लिए किनके लिए है, नास्तिक भी नहीं है अत्यंत अर्ध भी नहीं है किंतु अभी कुछ श्रद्धा उदित होने जा रहे हैं, कुछ कुछ उनके संस्कार हैं, वो साधु गुरु वैष्णव की बातें कुछ कुछ सुनने समझने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अच्छा भाई तुम नहीं कर सकता तो एक बात करो, तुम जल करो जो कुछ भाई खाते हो वो भगवान को अर्पण कर दो, जो खाते हो कर दो, जर्जी होशी जो हवन करते हो जो कुछ देते हैं उसको, जब तपस्या जो कुछ तपस्या करते हो वो हमको ही अर्पण कर दो। कृष्ण जानते हैं ऐसा करते 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 साधुओं का कम होगा और फिर समझ बूझ करके वैदिक वेद विहित कर्मों का फल ही वो हमको पीछे से देगा, अब ऐसी अज्ञता नहीं रहेगा। पहले इतना तो करे तो संसार वाले इतना तो पहले करेंगे, जो कुछ करते हैं मुझे देवता देवी को नहीं और दूसरे को नहीं, किसको, मत और वर्णन, मत माने बुझे दो माने कृष्ण को यहां पर देख रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति साधारण नहीं किंतु अभी प्रारंभिक है, पर्वत भजन के लिए बहुत प्रारंभिक, अभी भजन तजन पीछे नहीं है, पहले अपनी असत करनी थी है, किंतु धीरे धीरे साधुओं के संग में आने पर अपने कर्मों का अर्पण करते 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 कर ऐसा कुछ, इसलिए कह रहे हैं कि जो पुरुष जब तपस्या पहुंची है पुरुष पद अर्पण, भारत में भी ऐसा कहा गया, एक आया है ऐसा निहजत कर्म धर्म आय न विरागाय कल्प कल्पते और एक ऐसा और तावत कर्माणि पूर्वीत न निर्विद्ये तजावता मत कथा क्षणादो वा श्रद्धा दम न जाए, तावत कर्माणि पूर्वीत कर्म कब तक करो, कब तक हम लोगों को कर्म करना चाहिए,
जब तक कर्म से
हो कर्म से कभी भी कल्याण नहीं होगा, उससे बंधन में हो जाए, चाहे शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, तो एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, अच्छा कर्म करोगे उसके भोगने के लिए फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, और बुरा कर्म करो तो उसका दंड भोगने के लिए फिर तुमको आना पड़ेगा। इसलिए वो बेड़ियां दोनों है, एक सोने की बेड़ी अच्छी देखने में सुनने में लगती है किंतु वो भी बेड़ी है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कौन अच्छा
है?
बेड़ियां है किंतु लोग कहेंगे सोने की बेड़ी अच्छी होती है किंतु कीमती है ना, कीमती होने से वो और बंधन है। इसलिए कर्म मात्र ही बंधन है। गीता में कहा गया है ना, यज्ञा अर्थात कर्मणो कर्म बंधना तदर्थम कौन संथे मुक्त संग। मुक्त संग मैंने कर्मों में आसक्ति छोड़ करके शास्त्र विहित कर्म है वो मेरे लिए करो तो ये यज्ञ होगा। नहीं? शास्त्र विहित नहीं होगा तो वो यज्ञ नहीं होगा। निष्काम कर्म अर्पित कर दो भगवान तब तो होगा। कर्मों का फल छोड़ करके इसका क्या अच्छा या बुरा फल छोड़ दो और छोड़ करके जैसे एक लड़की की शादी करना है संसार में अब उसके फल में आसक्ति छोड़ करके अपने कर्तव्य के लिए उसकी शादी। यदि वो निष्काम कर्म होगा और उसका फल भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो एक तरह से ये यज्ञ इसी को कहते हैं कन्यादान। ये यज्ञ यज्ञ कराता है ना ये यज्ञ उसी तरह से और सब चीजें। यदि उसमें से अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ा आसक्ति नहीं छोड़ा तो वही जन्म बंधन में कर्म होगा। वो जिसको तुमने कन्यादान दिया वो तुमको कन्यादान के लिए तुम कन्या बनेगा और तुमको वो यज्ञ ये कर्म फल में करना। इसलिए ये कहते हैं ये कर्म निष्कर्मों की अस्तु प्रभाव वर्धितम न शोभते ज्ञान अलम निरंजन अकारण। जिस प्रकार से निष्काम कर्म उसमें कोई भी मल नहीं है तभी वो शोभित नहीं होता, उसकी शोभा नहीं होती। यदि भगवान को अर्पित नहीं होता जब निष्काम कर्म की ऐसी दशा है जो त्रिकाल में ही और सब समय अभद्र है बंधन का कारण है और वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया।